You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/govpsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ, 9058747171।
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind, just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਭਾਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 2 ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ 1 ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ, 6472903773 6472903773।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲਗਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਗਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲਡਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 9058409000 9058409000।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਤੇਂ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਆਪਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ। ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਹੋ ਯਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਸਭੀ ਕੇ ਲਿਏ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ, 416-502-8000, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਓਨਡ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਡ।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट, ईस्ट मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior. Popcorn ceiling ko remove karna. Water damage if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe unko remove karke bedaag karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting. Ya wallpaper lagwana chahte hain to call kijiye Texture style painting ke liye Painters of GTA 6472711974. Mohammed Salim 6472711974.
वेलकम बैक तमाम सामईन जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं 770 एम डायल पर और देख रहे हैं ई आवाज टीवी पर। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ अब तक के कितने मिसाइल गिरे हैं उसकी खबरें लेकर शाजिया मलिक साहिबा स्टूडियो आ गई हैं, क्योंकि आखिरी अभी कुछ ट्वीट पे छोड़ा था थोड़ा, उन्होंने कहा कि यार वो गिर जाए उसके बाद मैं आती हूँ फिर न्यूज दूंगी। मैंने कहा चले वो भी गिर गया, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि वो कुछ नुकसान तो हुआ है अमरीका का भी मुझे लगता है बेसिस पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मैं ट्वीट देख रहा था वो कह रहे नहीं वो कुछ नहीं हुआ जी सब चंगा है। तो क्या चंगा है कि नहीं है, तो ये सब आपको अप टू डेट खबरें देने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं अपनी उबर में बैठ के शाजिया मलिक साहिबा। आइए उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
वबरकातहु।
अच्छा खुद तुमने मुझे कहा था कि जी आप वो कर लें, इसको शॉर्ट कर लें, WS बोला करें।
मुझे तो ये WS आज तक समझ नहीं आता।
WS समझ नहीं आता, तुझे समझ नहीं आ रहा था, तूने सजेस्ट किया, तुझे अब समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ड्रामे जो है ना, मेरी बात सुन, ये चला जा यहाँ से, प्लीज नौटंकी कंपनी में चला जा, प्लीज चला जा, ये गलत जगह बैठा है, गलत जगह बैठा हुआ है ये, इतने पैसे भी नहीं तू उधर जा नौटंकी,
बहुत ज्यादा बने,
बहुत पैसे तेरे,
मिसाइल विजाइल गिर गया फिर
हॉलीवुड में कौन से मिसाइल गिर रही है, पागल हुआ हुआ है।
नहीं मैं
कोजेक की जगह खाली है ना वहाँ पे,
वो मुझे कई बार बुलाते हैं, लेकिन
हाँ ना,
मैं
वही तो
मेरा वो है नहीं,
हाँ, वो है
शौक नहीं, शौक नहीं है मुझे,
क्या शौक नहीं है, पैसे जब आएंगे तो शौक खुद बन जाएगा तुम्हारा।
ऐसा करती है वो, ही कहते हैं पैसे पे क्यों मरती, ऑल मनी
जाहिर है, अब तेरे पास पूरा सही बोलिएगा मिलियन यूएस डॉलर पड़े तो फिर जाहिर है
वो वैसे ही पड़े हुए,
वैसे ही पड़े हुए हैं,
मतलब वो मैं भी हाथ नहीं लगाता, वैसे पड़े मेरे भी हाथ नहीं लग रहे,
नहीं लगा सकता ना,
नहीं मुझे भी मना किया, हाँ वो बस है, बस
और हम गरीब लोग डॉलर कमाने वाले अब कैसे तेरा मुकाबला करेंगे, हम तो पैसों की बात करेंगे ना भाई,
किस्मत किस्मत कनेक्शन,
हाँ किस्मत कनेक्शन,
वो थोड़ा सा आपको
कनेक्शन गलत जुड़ गया,
वापदा का कनेक्शन है वो इसको वापदा वाले ही अलग करेंगे, अदरवाइज तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है,
मुश्किल लग रहा है एग्जैक्टली। वो जैसे कहते हैं ना वो कि जी वो किसी ने कहा कि जोड़े आसमान पे बनते हैं, तो कहा फिर अल्लाह ताला कम उतने भी थोड़े भी से ठीक नहीं कर रहे,
जोड़े आसमान पे बनते हैं,
जोड़े आसमान
ये मतलब जो खवातीन पहनती हैं जोड़े वो
वो नहीं, मियां बीवी जो,
अच्छा ओ मियां बीवी
जो शादियां
अच्छा अच्छा तो पता नहीं कपड़े कब से ऊपर बनने लग गए,
नहीं तो लोगों ने कहा कि ये अल्लाह ताला थोड़ा फ्रिज तो सही काम नहीं कर रहे, वैसे उतने भी सही काम नहीं हो रहा, कोई सिफारिश वारिश करनी पड़ेगी,
ना मतलब साफ सही था यार, अल्लाह का हमें हमें नो कम्प्लेन,
हाँ वो सुन रही है ना इसलिए
ना भी रही हो, लेकिन ये है कि इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता हो,
अच्छा अच्छा
एग्जैक्टली, और तमाम को भी यही कहना चाहिए भाई अपनी बीवियों से ज्यादा वो होशियारी करने की जरूरत नहीं है, जो है वो ठीक है बस एक अच्छा इंसान मर्द यही होता है, वो अपनी बीवी के साथ जो है वो खड़ा रहे,
बेशक वो खड़ी रहे ना रहे,
जब आप खड़े हैं तो वो खड़ी रहेगी क्यों जाएगी,
उस दिन बेचारा वो बेचारा आया नहीं था, वो क्या कह रहा था, इतना अच्छा बेचारा बंदा था वो
डिफरेंट स्पीशीज होती है, आप यू ट्राई डिफरेंट,
अच्छा
वो
क्या अंग्रेजी बोली है? अंग्रेजी तो समझ नहीं आई मुझे,
बहुत मुश्किल अंग्रेजी होती है।
अच्छा 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 अच्छा,
ये जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि
प्योर गोरा होता है इंग्लैंड का,
आपका तो 8-9 वाला बैंड था ना, आईलेट में,
हाँ आईलेट में
ऊपर वाला बैंड है, उससे भी ऊपर 10+ है ये।
अच्छा 10+ है, ओह अच्छा, इसे नहीं मेरा तो इंटेल के चूल उतना है ही नहीं,
क्योंकि आप आईलेट करके आप यहाँ ही है,
आईलेट की है मैंने,
हम तो आइल्स करके आए थे,
आप आइल्स करके आए थे, मैं आईलेट करके आई,
ये डिफरेंस,
हाँ ये डिफरेंस है।
तो इस पर थोड़ा सा तो अंग्रेजी का, वैसे आपको मालूम है मैं बहुत कम अंग्रेजी बोलता हूँ,
हाँ, हाँ।
क्योंकि लोगों को समझ नहीं आते,
हाँ। वो इतनी हाई लेवल की
है, बहुत हाई है,
तो वो जाहिर कैसे
वो इतनी हाई जितना ये B2 था ना बम्बार, ये इतनी हाइट पे जाता है कि नजर ही नहीं आता,
नजर नहीं आ रहा ना, तो ये
बस जब आवाज जब नीचे गिरा देता ना
बम्बार
के बाद जी मैं फटने लगा हूँ,
तो फट लो भाई,
और फट लो तुम आगे तो फट लो,
तो फट लो,
तो हमारे साथ भी एक भाई साहब हम आ गए तो अब तो फटेंगे,
हाँ अंग्रेजी आपकी फटेगी अब,
अंग्रेजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र,
अंग्रेजी
पूरे क्लियर करके आया था मैं आईलेट को,
आईलेट को ना नहीं तुमने आईज,
हाँ मैंने आईज किया था,
मैंने आईलेट किया था,
हाँ, हाँ, आपने आईलेट किया,
हाँ आईलेट किया,
लेकिन मैं पूरा पेपर देकर,
हाँ हाँ,
और
कोई दो नंबर ही नहीं किया,
नो नो नो,
किसी ने तुम्हारा पेपर नहीं दिया, तुमने खुद से किया ना, तो इसीलिए तुमने आईएलटीएस का एग्जाम दिया,
आपने आईलेट किया,
मैंने आईलेट किया,
आप तो घर बैठे होंगे आपका पेपर क्लियर हो गया होगा, हमने कहा लो भाई इतने इतने में पैसे देती हूँ, मामला तय होगा,
मामला तय,
चले भारत थोड़े क्या करते हैं, खबरें आज की क्या है वैसे, हाँ। वो सुनाए जाए, चले जनाब इस खबरों के स्पॉन्सर्स आपको मैं बता देता हूँ, जैस्मीन परमार, और जैस्मीन परमार से अब जो है वो ब्रेक के बाद आपसे बात भी कराएंगे, अगर आपने किसी भी किस्म की मॉर्गेज करानी है तो जैस्मीन परमार की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की प्रिंसिपल ब्रोकर हैं जैस्मीन परमार, दो लोकेशन इनकी है, एक मिसिसागा एक ब्रैम्पटन, आपने किसी भी किस्म की मॉर्गेज करानी है रेजिडेंशियल प्राइवेट या आपने रीफाइनेंसिंग करानी है, इसके अलावा अगर आपका रिन्यूअल भी आ रहा है तो आप जैस्मीन परमार को कॉल कर सकते हैं 647-923-5659 जी
शाजा जी। हाँ जी, तो जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह, राजा बादशाह जी आपको पता ही है कि आमिर के दोस्त हैं, आप जाएं राजा बादशाह के पास, आप आमिर का नाम लें तो आपको अगर दो गाड़ियां हैं आपके पास और एक घर है तो ऑटो और होम इंश्योरेंस पे आपको बहुत ढेरों पैसे बचाएंगे, 1775 से ज्यादा भी बचा सकते हैं, उनका नंबर है 6472903773। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं तो आपको जाना पड़ेगा स्पेयर एंड मके पे, मर्दों के बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और सारे इटालियन फैब्रिक के और इनका नंबर है 9056703388, तो आप उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बंडल डील्स चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत ही हाई एंड जैसे बॉश टाइप के, और वो भी आपको चाहिए है जो मार्केट है उससे कम प्राइस पे, तो सुल्तान भाई के पास जाए, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, बोवेड 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे है, इनका नंबर है 9054502828। और अगर आपके फैमिली में कोई इवेंट आ रहा है शादी ब्याह तो आप गोल्ड का कुछ देना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए भी आप गोल्ड का कुछ लेना चाहते हैं तो आप असलम भाई के पास जाओ, असलम भाई जो है वो पायल ज्वेलर्स पे होते हैं और बहुत जबरदस्त इंडिया पाकिस्तान और सिंगापुर की बहुत ही अच्छी ज्वेलरी लेकर आए हैं, और 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन में है, इनका नंबर है 9057907879। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीरक जो है बिल्कुल अच्छे से चलता रहे और कभी खराब ना हुए तो फिर आपको जाना पड़ेगा क्विक ट्रक ल्यूब के पास, QTL, QTL के पास बहुत ही जबरदस्त मैकेनिक्स भी है और ऑथेंटिक ऑयल्स डालते हैं, कोई दो नंबर ही नहीं है जी, इन्होंने जब पेंडेमिक भी चल रहा था तब भी गंदा किस्म का दो नंबर ऑयल नहीं डाला था, तो आप इनके नैपनी के लोकेशन पे जाएं तो आपको बहुत ही अच्छे सर्विसेज मिलेंगे, इनका नंबर है 1519622060। अच्छा खाना खाना है तो आपको जाना पड़ेगा फैसल चटा साहब के पास विलेज टेस्ट में, विलेज टेस्ट के दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक में से सागा में एक ओकविल में, तो वो कहते हैं अगर आपको कोई भी अगर आपने डाइन इन करना है या टेक आउट करना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 6477744888। एंड जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान होती हैं डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा में, अब इनके जो है तीन डेंटिस्ट्री ऑफिसेज हैं, दो ब्रैम्पटन में और एक मिसेस सागा में, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9058721100। ठीक है जी। अच्छा जनाब कर्णी साहब जो हैं उन्होंने आज एक्स पे कहा कि जी मैंने मेरी बातचीत हुई थी ट्रम्प साहब के साथ ऑन गोइंग वॉर्स इन मिडल ईस्ट, और वो कहते हैं जी कि हमने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि डी एस्केलेट करना चाहिए इसको, कॉन्फ्लिक्ट को। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अभी ये जो इस वीक में ये जो नेटो का समिट है इसके अंदर हम जो है बातचीत को और आगे लेके जाएंगे, ट्रेड टॉक्स भी हम करेंगे। और अभी की जो न्यूज आई थी हमारे पास कि इन्होंने एक कॉर्नी साहब ने सिक्योरिटी जो अग्रीमेंट है वो साइन किया है। इससे पहले ट्रंप साहब जो है उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि बहुत ज्यादा डैमेज आ गया है तीन न्यूक्लियर साइट्स जिसपे अटैक किया था इन्होंने ईरान में। तो उसी रिस्पांस में जो है कार्नी साहब बोल रहे थे कि दोनों पार्टीज जो हैं उनको इमीडिएटली निगोशिएट करना चाहिए और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि इस क्राइसिस को एंड किया जा सके। उन्होंने कहा जी कार्नी साहब ने कि जैसे G7 लीडर्स ने हमने अग्री किया था इन कनेनेस्किस के हम जो है वो इरेनियन क्राइसिस के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और डी एस्केलेट करेंगे हॉस्टिलिटीज को मिडल ईस्ट में, न सिर्फ ईरान में बल्कि इमीडिएट सीज फायर हमको करना चाहिए गाजा के अंदर भी। उन्होंने कहा जी के जो है इसके ऊपर हमको इमीडिएटली काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आज कनाडा जो है उसने अपने जो कतर में सिटीजन्स हैं उनको कहा है कि आप बिल्कुल कॉशस रहे और यानी कि जो है ज्यादा घूमने फिरने की बहुत जरूरत नहीं है इधर उधर अननेसेसरली, क्योंकि यूएस एम्बेसी जो है उसने रिकमेंड किया है शेल्टर इन प्लेस। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप लोग शेल्टर लो। अगेन इसका यही मतलब है कि बहुत खुलेआम बहुत ज्यादा घूमने का जरूरत नहीं क्योंकि कतर छोटा कंट्री है और हिटिंग जो है वो अगर वहां पे जैसे अभी शुरू हो गई है उनके जो यूएस बेसिस के ऊपर तो वो गोली तो अब या जो जो बॉम्ब या के जो मिसल का जो पुर्जा उड़ के जाएगा वो तो नहीं देखेगा कि ये अमेरिकन है या अमेरिकन नहीं है, वो तो किसी को भी लगेगा एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो इसलिए उन्होंने भी आज कनाडा ने भी कहा है अपने सिटीजन्स को कतर में कि आप बिल्कुल सावधान रहें। कनाडा जो है जी वो टेम्पररली पॉज कर रहा है रिमूवल्स और डिपोर्टेशंस ऑफ इसराइलीज क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि अब ईरान के साथ इनकी लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। CVSA जो है उसने कहा है कि ये चूंकि सिचुएशन बहुत ही वोलाटाइल है और अनप्रिडिक्टेबल है ये ईरान की जो के साथ जो वॉर है इसराइल की, तो इसलिए हम हॉल्ट कर रहे हैं ये सिस्टम जिसको के बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेफरल ऑफ रिमूवल्स। और ये उस वक्त रखा जाता है जब कोई कंट्री अनसेफ होती है और एनवायरमेंटल डिजास्टर जो होता है उसके या वायलेंस की वजह से ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप सिटीजन्स को निकाल दें और वो जाके फिर उन कंट्रीज में उनकी डेथ होए। इस वक्त जो कनाडा के जो डेफरल लिस्ट है उसके ऊपर 16 कंट्रीज है जिसके के अंदर यूक्रेन, सीरिया, माली, सूडान, लीबिया, येमेन, बुरुंडी, वेंजुएला, हेटी, लेबनान, गाजा और भी कुछ कंट्रीज जो है इनकी लिस्ट के ऊपर है। अल्बर्टा में जी तीन जगहों के ऊपर जो है वो आज बाय इलेक्शंस हो रहे हैं और NDP के जो लीडर है नाहीद नैंची वो अब सोच रहे हैं विन करने के लिए एक सीट क्योंकि एक साल से बिल्कुल ये पॉलिटिक्स से साइडलाइन होके बैठे हुए थे। और जो वन ऑफ द थ्री प्रोविंशियल बाय इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें से एक राइडिंग में ये रन कर रहे हैं जो कि है एडमंटन स्ट्रैथकोना से। और ये जो थे इनकी प्रेडिसेसर रेचल नॉटली ये यहां पे होती थी और आपको पता है कि बहुत दफा कोई 80% टाइम्स जो है वो यहां से जीतती होती थी और वोट भी उनको बहुत सारा पड़ता था, काफी पॉपुलर थी। इसके अलावा जो एडमंटन एलर्सली से जो NDP के कैंडिडेट है गुरतेज सिंह बरार वो सोचते हैं कि वो यहां पे काफी जो है वो अपना स्ट्रांग होल्ड NDP का बनाए रखेंगे, लेकिन यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं नरेश भरद्वाज वो लग रहा है कि उनको काफी सख्त देने वाले हैं, मुकाबला देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी जो पोल्स भी आ जाए हैं वो भी ये शो कर रहे हैं कि UCP जो है वो काफी यहां पे मजबूत है अल्बर्टा में। इसके साथ जो दूसरी दो राइडिंग्स है जहां पे कि आज बाय इलेक्शंस हो रहे हैं वो है एक है ओल्ड्स डिड्सबरी थ्री हिल्स और दूसरी है एडमंटन एल्सली। तो ये जो हैं अब इसमें रिजल्ट्स जब आएंगे कल तो फिर हम आपको डिटेल्स देंगे कि कौन किस राइडिंग से जीता है। डग फोर्ड साहब जो है वो बड़े खुश नहीं हैं क्योंकि ट्रोनो ने आज अनाउंस किया है कि आउटडोर पूल्स जो है वो चूंकि टेम्परेचर्स बहुत हाई हो गए हैं तो हम बंद उसको रखेंगे और हम ये बहुत ज्यादा कॉशियस के तौर पे कर रहे हैं और सिटी के रिसोर्सेज हम इस पर यूज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कुछ पूल्स जो आउटडोर है उसको हम क्लोज कर रहे हैं फॉलोइंग द प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट्स और स्टाफ के हेल्थ के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो अब टेम्परेचर है राइज कर जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो लाइफ गार्ड्स और दूसरा नेसेसरी स्टाफ है उसको हम चाहते हैं कि वो भी कूल रहे, यानी कि क्योंकि जाहिर है कि इस वेदर में जो है वो हीट स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। तो वो कहते हैं जी हम किसी को भी नहीं चाहते जो पूल पे आ रहा है या जो उधर जो है हिफाजत के ऊपर लोग भी है, तो आप किसी भी पूल पे जाने से पहले सिटी का वेबसाइट देखें। अब डक फोर्ड साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं जी ये बहुत ही पुअर किस्म का एक्सक्यूज है। वो कहते हैं जी कि मैं मेयर चाओ के ऊपर कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, आई लाइक हर, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी डायरेक्टिव नहीं आया है कि पूल्स को शटडाउन किया जाए। तो वैसे भी इट डजंट मेक एनी सेंस, अगर ज्यादा गर्मी है तो पूल्स ज्यादा खुले रहने चाहिए ताकि लोग जो है वो उसमें ठंडे पूल्स में बैठे रहे। बहरहाल जी टोरंटो सिटी ने बंद किया। इसके साथ साथ टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जो है उसने भी वार्न किया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो स्कूल्स के अंदर भी अनकंफर्टेबल कंडीशन रहेंगे। और अभी तो रेगुलर स्कूल चल रहा है और उसके बाद आपको पता ही है कि चलना शुरू हो जाएगा समर स्कूल भी, तो उसी सिलसिले में ये जो है इनका जो है ये सारा डिटेल्स आए हैं। ईरान के आर्म फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अब्दुल रहीम मोसवी, उन्होंने कहा है जी कि ये जो यूएस ने हमारे ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं इसका बिल्कुल हम जवाब देंगे, जो हमारे न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने हिट किया है। उन्होंने कहा जी कि ये क्राइम है और डेसिक्रेशन है और ये बिल्कुल अनआंसर्ड नहीं जाएगी, और ये जो एक्शन है अमेरिका का ये एक मिस्टेक है जो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। इससे पहले यूएस जो है उसने ऑर्डर दिया था कि कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है उसको खाली किया जाए। यूएस जो है मिडल ईस्ट में बहुत सारे बेसिस चलाता है, तकरीबन 19 के करीब इसके जो है डिफरेंट कंसर्न्स हैं वहां पे मिडल ईस्ट में, और ये सारे ही फैले हुए हैं इधर कुवैत, इराक, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, सब जगह के ऊपर। तो उसमें से आज ये जो अल उबैद एयरबेस है उसके ऊपर जो है ईरान ने आज 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनके साथ हमला किया है, लेकिन उससे पहले ईरान ने अनाउंस कर दिया था कि हम इस बेस के ऊपर जो है वो करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, जिसकी के अभी तारीफ जो है फिर ट्रंप साहब ने भी की। और ट्रंप साहब ने कहा जी इट इज टाइम फॉर डी एस्केलेशन, मतलब वधाइयां गल्ला तुसी खुद थे उसके बाद जी हुंडा, अब आप खुश हो गए हैं, कहते हैं कि हम बड़े थैंकफुल हैं इसके ईरान के कि उसने हमको अल्टीमेटम दिया था इसके ऊपर करने के लिए जो है अटैक। इसराइली मिलिट्री जो है उसने भी वार्न किया है कि अगर हमारे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर ईरान ने कोई हमले किए तो फिर हम भी उसको जो है जवाब देंगे। इसके साथ साथ नेटो के जो चीफ थे मार्क रूटे, उन्होंने भी आज रिपोर्टर्स को बताया कि यूएस के जो स्ट्राइक्स ऑन ईरान है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करते। वाह वाह क्या बात है, किसी और कंट्री का आप सॉवरेनिटी खराब कर रहे हैं, आपका लड़ाई भी नहीं है फिर भी आप जाके हिट कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं हुआ, वाह क्या बात है, तो उन्होंने आज ये कहा। इसके साथ साथ रजा पहलवी जो बेटे हैं ईरान के जो आउस्टेड शाह जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि वेस्ट जो है उनको एक लाइफ लाइन बिल्कुल ईरानियन लीडरशिप को नहीं देनी चाहिए अंडर आयतुल्ला अली खामनाए, और इसके जो दिन है वो आखिरी चल रहे हैं और इसकी रिजीम कलैप्स कर रही है। अब ये जब सारी बातें चल रही थी तो आज रिपोर्टर्स ने जो अमरीका में प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलाइन लेविट उससे पूछा कि भाई ईरान तो कह रहा है कि ये चीजें जो है ये अब माफ नहीं की जाएंगी, तो उन्होंने कहा जी कि प्रेजिडेंट ट्रंप जो है वो एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड है। अगर एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड थे तो ईरान तो ऑलरेडी एंगेज था आपके साथ अंकल, आपके साथ ऑलरेडी बात भी चल रही थी जबकि इसराइल ने अटैक कर दिया और आपने उसको रोका नहीं, उसके बाद फिर आपने वीकेंड पे आपने खुद अटैक कर दिया, तो आप कैसे इंटरेस्टेड हैं सैम अंकल आप उनके साथ एंगेजमेंट के लिए हैं। तो बहरहाल जी वो कैरोलिन लेविट ने कहा जी कि हम इसके साथ एंगेज करने को तैयार है, और लेकिन ईरानियन जो हैं उनको देखना चाहिए कि ये इनक्रेडिबली वायलेंट रजीम है जो उनको डेकेड से सप्रेस कर रही है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकची जो हैं उनकी आज मुलाकातें मॉस्को के अंदर प्यूटिन साहब के साथ हुई हैं, और वो कहते हैं जी कि हमने ये सारी चीजें जो हैं इसमें डिस्कस की है। इसके साथ साथ जो आपको पता ही है कि फ्रांस, जर्मनी और यूके जो थे वो भी ये चाहते थे कि ये जो है वो चीजें बातचीत की तरफ चलें, लेकिन इसराइल ने जो फिर इनके अटैक किया है ये जो इनकी एवन प्रिजन है तेहरान पे उस पर आज फ्रांस भी उसके ऊपर भड़क गया है। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जॉन नोएल बैरो जो है उन्होंने कहा जी कि ये एवन प्रिजन के ऊपर जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इनके फ्रेंच जो दो नेशनल्स हैं सेसिल कोहलर एंड जाक परीस वो यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी पिछले 3 साल से ये यहाँ पे थे और हम कोशिश कर रहे थे उनको निकालने की, आपने उनकी लाइफ जो है उसको भी एंडेंजर किया। इसराइल ने कहा जी कि हमने कोई बहुत ज्यादा अंदर जाके जेल में कोई अटैक्स नहीं किए, उसके दरवाजे तक ही हमने अटैक्स किए हैं। तो लेकिन पेरिस ने कहा कि ये, यानी कि फ्रांस ने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने आज मान लिया यूनाइटेड नेशंस ने कि इसराइल ने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं उन्होंने कुछ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो अपार्टमेंट्स थे जिसके अंदर सिविलियंस रह रहे थे उसके ऊपर अटैक किया और उनमें जो मारे गए लोग 3 एड वर्कर्स भी थे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता ही है कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें कि ईरान के जनरल्स थे बहुत सारे, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था। यानी सोचो जी, साढ़े जर्नैला के नाल जरा मुकाबला करो, ईरान के जनरल्स, इतनी बड़ी ऑयल पावर के जनरल्स एक फ्लैट में रह रहे थे, फ्लैटों में रहते हैं बेचारे वहां पर, तो उनको मारा था, तो उसके ऊपर आज यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट आई है। बहरहाल जी, ईरान जो है वो तो जवाब दे रहा है, लेकिन इसराइल किसी सूरत भी रुक नहीं रहा है। आज भी उसने बेशुमार पैलेस्टीनियंस को गाजा के अंदर भी मारा है जिसके के अंदर एड सीकर्स थे, और उसके ऊपर जो है फिर आज फिर से बस दुनिया के रिएक्शन ही आते जा रहे हैं बार 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 जो है वो जो है, और काम शाम तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जनाब, अब वैसे तो चाइना जी हमारा दुश्मन है, यूएस कहता है ना ओ हो बड़े ये खराब लोग हैं और बड़े इन्होंने जो है दुनिया सारी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश है और टैरिफ्स भी इनके ऊपर लगाए हैं ये। आज जनाब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है उन्होंने चाइना को इल्तजा किया है कि ईरान को रोको कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मिस जो है इसको बंद ना करे। आपको पता ही है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स है, 21 किलोमीटर्स सिर्फ ये है, लेकिन जितने भी ना सिर्फ इलाके के बल्कि दुनिया सारी में जो ऑयल कार्गोज यहां से जो है वो गुजरते हैं, तो आज जो ये इनकी ईरान की पार्लियामेंट है उसने आज ये अप्रूव किया है प्लान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मिस को बंद किया जाए। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि फाइनल डिसीजन जो है इट लाइज विद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो है वो है। तो उसके ऊपर जी मार्को रूबियो ने चाइना को कहा है कि ये आप बंद करें। चाइना खुद जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर ऑफ इरेनियन ऑयल है और उसके काफी क्लोज रिलेशनशिप है इसके साथ। ये जो अभी उसने लास्ट मंथ ही ऑयल परचेज किया था 1.8 बिलियन बैरल्स पर डे जो था वो ले रहा था, तो उसकी वजह से जब से ये अनाउंस हुई है कि जी अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मिस बंद कर देगा, क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ ईरान या इंडिया या पाकिस्तान या चाइना पे नहीं होगा, चाइना के साथ तो शायद वो अपनी ट्रेड रखेंगे, ये जो है पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो दुनिया की 20% ऑयल जो ट्रेड है सारी वो यहां से पास करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मिस से, तो जाहिर है कि वो इसका इफेक्ट आएगा। आज जब ये न्यूज ही अभी आई है तो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जो है वो इट वाज हाईएस्ट इन द लास्ट 5 मंथ्स और ये सारी जो ब्रेंट है ये क्लाइम कर गया 81.40 पर डॉलर पे। ऑन ट्रूथ सोशल ट्रंप साहब ने लिखा कि मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि कौन लोग जो है ऑयल का प्राइसेस ऊपर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल आपको, ये डोंट प्ले इन द हैंड ऑफ द एनिमी यानी कि ईरान एंड डोंट डू इट। और इसके अलावा उन्होंने बड़ा जी आज बड़ी खुशी का इजहार किया कि हां शायद इन अटैक्स के बदले में शायद कुछ रिजीम चेंज ईरान के अंदर आ सकता है, और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा अपनी ही नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर को तुलसी गैबर्ट को। उन्होंने कहा जी ये जो पूरी रिपोर्ट लेकर आई है ये बिल्कुल गलत है कि वो बिल्कुल उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं है और उनके सुप्रीम लीडर ने इसका ऑथराइजेशन नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं तुमने बताया है। और उसके बाद जो है ये जो है इन्होंने कहा कि ये जो इनके पास जो है वो ये बिल्कुल कैपेबिलिटी है ये कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसका असर जो है काफी लोगों पे अब देखा जाएगा, कंट्रीज पे लिखा देखा जाएगा, जैसे कि इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, क्योंकि यहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बहुत ऊपर जाएंगे। अगर आपको याद होगा कि लास्ट मंथ वीक ही अभी मैंने कहा था कि अगर ये इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, बल्कि 2 वीक्स पहले मैंने आपसे कहा था, तो ये जो ऑयल के प्राइसेज है वो $100 पर बैरल पे जाएंगे। तो ये जो है अब आप देखें कि उसी तरफ जा रहे हैं, 81.40 पर बैरल था आज, और हौले हौले अगर ये बंद कर देंगे वाकई तो ये इस तरह से आगे चीजें जाएंगी। अच्छा, आज जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने कहा जी कि नतन याहू जो है ही इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू रीजनल पीस, کیونکہ یہ اسرائیل جو ہے یہ علاقے کے ہر ملک میں یعنی کہ یمن پہ حملہ کر رہا ہے, لیبنان پہ کر رہا ہے, اب ایران پہ کر رہا ہے, سیریا پہ کر رہا ہے, تو یہ بڑی مشکل ہے. آج او آئی سی کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو یہ عرب لیگ کے ڈپلومیٹس جو ہے ان کو استنبول کے اندر جو ہے ایڈریس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جو ہے بہت زیادہ یہ وائڈ ہوتا جا رہا ہے کانفلکٹ. حالانکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ترکیے کے کافی کلوز ریلیشن شپس ہیں اسرائیل کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل میری گورنمنٹ اس چیز کو انڈورس نہیں کرے گی کہ اسرائیل اپنا جو اٹیکس کا دائرہ ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ہم کو چیزیں ڈپلومیٹیکلی جو ہے سالو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ زائنسٹ ایمبیشنز جو ہیں یہ پورے ریجن کو ڈریگ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ڈیزاسٹر جو ہے لے کے آئے گے. انہوں نے کہا جی کہ ویسٹرن لیڈرز جو ہے وہ بالکل انکنڈیشنل سپورٹ اسرائیل کو دکھا رہے ہیں, لیکن ہم جو ہے ترکی اپنے بارڈرز پہ یہ بالکل ایسے نہیں کرنے دے گا اور مڈل ایسٹ کی جو کا میپ ہے اس کو ری ڈرا ہم نہیں کرنے دیں گے وچ از ریٹن ان بلڈ, اور ہم بالکل ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی میں کھڑے رہیں گے. اور یہ جو اسرائیل کی بینڈٹری ہے یعنی کہ ڈاکو پنا ہے یعنی کہ ہر علاقے کے اوپر وہ قبضہ کرے, اس کو ہم جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایران کے کی سائٹس ہے جیسے کہ اصفہان وغیرہ جو انڈر اٹیک آئے ہیں ان کے, تو ابھی تک تو وہاں سے کوئی ریڈیشن کے لیکس نہیں ہیں, لیکن اگر ہوئے تو بہت زیادہ پرابلم ہوئے گا. 57 ممبر او آئی سی جو فائنڈ کی گئی تھی ان 1969, اس کا مشن ہی یہ تھا کہ ہم مسلم ورلڈ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کریں گے اور انٹرنیشنل پیس اور ہارمنی کے لیے کام کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطر کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ایک دفعہ ریڈیشن پھیلنی شروع ہو گئی تو قطر, بحرین, کویت, سعودی اور یو اے ای کے پاس بالکل پینے کا پانی نہیں رہے گا. یس یو ہرڈ می رائٹ, پینے کا پانی نہیں رہے گا کیونکہ جو سمندر ہیں وہ سارے اتنے پلیوٹ ہو جائیں گے اور ان کے پاس ریزروائرز نہیں ہیں جس کے اندر انہوں نے پانی صاف کرنے کا رکھا ہوا, اتنا زیادہ کم ہے. تو ان کی بہت ساری پاپولیشن, حالانکہ تھوڑی پاپولیشن ان کنٹریز میں, ان کے پاس پینے کا صاف پانی بھی نہیں رہے گا. تو خطرہ جو ہے جی علاقے میں بہت زیادہ بڑا ہے. قطر, یو اے ای, بحرین, کویت, سعودی, لبنان, جارڈن سب نے اپنا ایئر سپیس بند کر دیا ہے. پاکستان نے بھی اپنا ایئر سپیس بند کر دیا ہے. کمرشل فلائٹس بہت سارے کینسل, ڈیلے اور ری راؤٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. ٹوریزم آپریٹرز جو ہیں وہ بے انتہا پریشان ہیں کیونکہ ہزاروں ہی ان کو کالز آ رہے ہیں. ٹریولرز جو ہیں وہ بےچارے کنفیوزڈ ہیں, اسٹرینڈڈ ہیں ٹرمینلز پہ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہاں سے جہاز نہیں چلے گے تو اپنے کنٹریز میں کیسے پہنچیں گے. جون جو ہوتا ہے وہ اٹ از دا اسٹارٹ آف ٹوریزم ان گلف کنٹریز اور ساری دنیا, خاص طور پہ یہ دبئی میں اور اب تو یہ جو ہے دوحا میں بھی بہت زیادہ آنے لگی ہے. سعودی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں کیونکہ یہ اگین حج کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ذرا ٹھنڈا رہے گا جو ہے وہ رش, تو ہم جا کے آرام سے اپنا عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو بہت ہائی ٹوریزم یہ سیزن ہے گلف کا, اور اس کے علاوہ بھی ٹرانزٹ ٹریولرز بہت ہوتے ہیں جو کہ جاتے ہیں مالدیوز, تھائی لینڈ اینڈ ای یو, تو وہ سارے یہاں پہ دوحا میں اور دبئی میں رک رک کے جاتے ہیں. ویسے تو ہوٹلز جو تھے اسی لیے پورے فل آکیوپینسی پہ چل رہے تھے, لیکن اب جب یو ایس نے یہاں پہ حملہ کیا ہے اور یہ ایئر سپیس بند ہو گئی ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے اب بے تحاشا کینسلیشنز جو ہیں ہوٹل کے یہاں پہ آنے لگے ہیں. دوحا میں, دبئی میں, ابو دھابی میں, ایون استنبول لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں ترکیے میں بھی گرمیوں میں, تو وہ بھی اب بکنگز جو ہیں وہ ساری باؤنس بیک کر رہی ہے. ہوٹلز جو ہیں ان کے کمرے خالی ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اسٹرینڈڈ جو کہ ایئرپورٹ ہے وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ لوگوں کے لیے مشکلیں ہیں. ہنڈریڈز آف پیپل جو ہے انہوں نے جناب ہیگ میں نیدرلینڈز کے اندر جو ہے وہ کیے ہیں مورچے نکالنے شروع کر دیے تھے انہوں نے جو ہے ویکینڈ سے ہی, کیونکہ نیٹو جو ہے اس کا یہاں پہ سمٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ملٹری سپینڈنگ جو ہے اس کو انکریز کریں. تو لوگوں نے کہا جی کہ آلریڈی ملٹری سپینڈنگ انکریز کرنے کی وجہ سے اسرائیل کانسٹنٹلی پنش کر رہا ہے لوگوں کو, پیلسٹینینز کو غازہ کے اندر, اور اب اس نے ایران کے اوپر بھی اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ سمٹ ویسے آفیشلی تو کل سے شروع ہو رہی ہے ٹیوزڈے سے, لیکن لیڈرز جو ہے وہاں پہ آج پہنچ گئے ہیں. لیڈرز آف 32 نیٹو ایلائیڈ کنٹریز جو ہے وہ اب ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیسے اور زیادہ ڈیفنس کی سپینڈنگ جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے, کیونکہ یہ ڈیمانڈ جو ہے بڑے عرصے سے ٹرمپ صاحب بھی کرتے تھے کہ کیوں یو ایس جو ہے وہ سارے کا سارا حصہ ڈالے گا, تم لوگ کیوں نہیں زیادہ ڈالتے ہو. تو اس لیے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اب زیادہ حصہ ڈالنے کو تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہنڈریڈز آف جو پیپل تھے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا وائٹ ہاؤس کے سامنے کل, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس کیوں اس کانفلکٹ میں اسرائیل کے ساتھ انٹر ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کانفلکٹ اسرائیل کا ہے, इसराइल हमको चलाता है कि हम इसराइल को चलाते हैं, क्योंकि अमेरिका के पैसे पे इसराइल चलता है, तो बॉस कौन किसको कर रहा है कि क्यों हम लोग ब्लैकमेल यहां पे हो रहे हैं। अगर आपने देखे हैं जो बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे डिफरेंट सिटीज के अंदर अमरीका में वीकेंड के ऊपर, तो आपने देखे होंगे। इसके साथ साथ जो डीसी के अंदर प्रोटेस्टर्स थे वो भी स्ट्रीट्स पर निकले हुए थे और उन्होंने कहा जी कि इनफ इज इनफ, हमको अपना जो है काफी, हमारे अपने खुद के अमरीका में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। बेशुमार पुलिस जो थी वो डीसी में थी, खासतौर पर व्हाइट हाउस के पास, और उन्होंने कहा कि डीसी को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे कंट्रीज में इसी तरह और भी बहुत सारे प्रो पैलेस्टीनियन जो है प्रोटेस्ट निकले हुए थे और काफी सारे लोगों को जो है वहां पे अरेस्ट भी किया गया है और कुछ को तो वहां से जो है वो भगाया भी गया है। तो काफी दुनिया के अंदर ये आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि यूरोप में तो खासतौर पर जून ही रेंग रही है जो लीडर्स है उनके सर पे। हम इधर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम इंडिया पाकिस्तान और एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की खबरें जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे।
बिल्कुल शारदा जी, और एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी रिसेंटली एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई समझ लें, और बड़ा जबरदस्त है, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। इट हैज बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इसराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। और वो कह रहे हैं कि अगले छह घंटे में, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है, आप 77 पे सुन रहे हो इस वक्त, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोट कर रहा हूं, एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। और उन्होंने कहा है कि सीज फायर हो गया, ईरान 12 आवर्स के लिए पहले ईरान उसको अपना होल्ड करेगा, उसके बाद अगले 12 घंटे इसराइल वहां से कोई फायरिंग नहीं करेगा, और उन्होंने कहा कि विद इन 24 आवर्स ये कंप्लीट सीज फायर हो जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि इस पीसफुल एक्ट के ऊपर उन्होंने दोनों कंट्रीज का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने मिडल ईस्ट का भी शुक्रिया अदा किया, कतर का किया, ईरान का किया और इसराइल का किया, और एंड में भी उन्होंने जो पूरा इनका ट्वीट पे मैसेज आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सीज फायर हो गया है बिटवीन ईरान और इसराइल के दरमियान एज पर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट, क्योंकि मैं कोट कर रहा हूं उनका ट्वीट इस वक्त जो मैं देख रहा हूं,
और आज बहुत खुश हो गए थे क्योंकि जो ईरान है
शायद जी उनके सोशल को मैं सुबह से ही फॉलो कर रहा था, अब से दो घंटे पहले उन्होंने एक जब डाला था ट्वीट, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो रहा था दो घंटे पहले, मैं
बहुत शुक्रिया,
उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। ये डोनाल्ड ट्रंप का दो घंटे पहले का ट्वीट है जो आपने बताया
था, लेकिन वो इसलिए खुश हुए थे क्योंकि जो है ईरान ने अटैक करने से
और हमने वार्निंग दे दी थी,
वार्निंग उनको दे दी थी, तो वो बहुत खुश,
और उन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया था अपनी दूसरी ट्वीट अगर उनको देखें तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का आपने हमला किया हमें पहले से ही पता था, अगर आप ना भी बताते
लेकिन फिर भी
हमने शुक्रिया अदा किया उनका,
लेकिन
अब उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दी है अब से कुछ ही देर पहले, और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। एंड में उन्होंने कहा जनाब गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडल ईस्ट, और एंड में गॉड ब्लेस दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका। तो
गॉड ब्लेस तो उन्होंने कहना ही था मिडल ईस्ट, क्योंकि जो है मिडल ईस्ट के शहजादों ने आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपके साथ डील किए हैं,
बिजनेस वो तो चल ही रहा है,
तो आप लेकिन उनको कैसे बर्बाद करेंगे।
एक अच्छी खबर शाहजी,
अच्छी खबर है,
क्योंकि जंग किसी भी हाल में किसी के साथ भी हो वो उसका कोई हल नहीं है, लेकिन अगर ये सीज फायर का दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि अब मामला आगे इसको अब बढ़ाया जा सकता है।
और ये बहुत खतरनाक न्यूज थी ना कि जिस वक्त इन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट ने कहा कि बिल्कुल शट डाउन कर देंगे, तो उसकी वजह से जो इनके बिलियनर फ्रेंड्स है ना,
बेसिकली ये भी उनकी टैक्टिक थी, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक थी, क्योंकि बंद वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मेजोरिटी,
सिर्फ चाइना को कहा था कि आपके लिए बंद नहीं करेंगे,
पॉसिबल होता नहीं है शायद जी, जब शिप गुजर रहे होते हैं तो बहुत क्लॉस हो जाता है,
वो आज भी स्ट्रैंडेड थे शिप्स खड़े हुए थे।
जी जी बिल्कुल, सुबह से ये न्यूज थी, लेकिन अलहमदुल्ला जनाब सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया ट्वीट पर कर दिया, और ये ब्रेकिंग न्यूज आपको ई आवाज टीवी और 770 के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। एज पर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट, सीज फायर हो गया है। अब अगले दो घंटे के बाद ईरान फायर कर दे या इसराइल फायर कर दे नहीं कह सकते, लेकिन अब तक की जो खबर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कर दिया है,
वो बहुत कुछ कहते भी रहते हैं वैसे
वैसे तो अब तक जो कहा है उन्होंने वो हो भी रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलें, गुड न्यूज फॉर एवरीबडी। और दुनिया में जहां कहीं भी लोग हैं, खासकर मिडल ईस्ट खत्ते में, बहुत से सुबह से ही सब लोग जो यूएई में, कई मेरे दोस्त यार रिश्तेदार हैं, आप सबके भी होंगे, इवन कतर में एक मेरे कई रिश्तेदार हैं, दे वर लाइक वेरी कंसर्न कि अगर ये चीजें आगे फैलती हैं तो काफी टेंशन फैल सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर हो गया है, तो ये आगे इसकी जैसे ही अपडेट्स और आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। यहां एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की खबरें सुनाएंगी शाजिया मलिक साहिबा, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं।
WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-450-2828-905-450-2828।
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 905-232-3663। विलेज टेस्ट।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 905-790-7879, दैट इज 905-790-7879।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अयो, इतना खूबसूरत घर।
आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो रब्ता करो, एक जीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन? टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता ना करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं। बहुत मुनासिब दाम है, अब यही आजमाइश शर्त है। गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 416-838-7837।
वेलकम बैक तमाम सामाइन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। हमारे साथ प्रोग्राम में न्यूज का अगला सेगमेंट लेने के लिए शाजिया मलिक साहब अभी स्टूडियो मौजूद हैं। जनाब, एवरी मंडे एंड फ्राइडे हमारे साथ जैस्मीन परमार शामिल होती हैं। इस वक्त तो बिजी हैं, लेकिन मैं उनका मैसेज आपको दे देता हूं। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, वो जैस्मीन परमार के ताउन से आपको दे रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी अभी कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन और फुली एन एग्रीड सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल। और उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी, उन्होंने ईरान को भी मुबारकबाद दी, उन्होंने इसराइल को भी दी और अपने आप को भी थोड़ा सा उन्होंने जो है वो, जाहिर है खूबसूरत आदमी तो आएगा ना, अगर खूबसूरत है तो, अगर उसने कराया है तो। बहर अच्छी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज अभी हम 770 के प्लेटफॉर्म से ही आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एज पर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर हो गया और ये न्यूज आप तक पहुंचा रही है जैस्मीन फरमा के ताउन से। और अगर आपने किसी भी किस्म की मॉर्गेज करानी है जनाब, तो आपको एक रिलायबल और ट्रस्ट नेम आपको देते हैं कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर हैं। और अगर आपने वो रीफाइनेंसिंग करानी है, रिन्यूअल आपका अगर आ रहा है, इसके अलावा मॉर्गेज आपको कमर्शियल लेनी है या रेजिडेंशियल लेनी है, ऑल वन विंडो सोल्यूशन आपको देंगे, तमाम ही मॉर्गेज का सोल्यूशन आपको मिलेगा जैस्मीन परमार की स्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, प्रिंसिपल ब्रोकर हैं। और उनका नंबर है 9235659। کال کریں تو سازو آواز کا ریفرنس ضرور دیجیے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں شازیہ ملک کی طرف، خبریں پاکستان، ہندوستان، انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کی۔ جی شازیہ۔
ہاں جی، اچھا جناب، پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے بہت زیادہ اسرائیلی اگریشن اگینسٹ ایران جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم جو ایران کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، ہم اس کو بالکل ہم اس کے سٹینڈ کھڑے ہیں، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز چارٹر کے اندر بھی جو ہے یہ چیز بہت کلیئرلی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے آج جو میٹنگ کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی جس کو چیئر کر رہے تھے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، انہوں نے یہ جو ریجنل ایوالوگ سچویشن ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے بہت کنڈیم کیا اسرائیل کو اور ریگریٹس شو کیے کہ یہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، ایران جو تھا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا جس وقت یہ ساری لڑائی ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یو ایس کو بھی کہا کہ انہوں نے بالکل اس کا ریکلیس یہ طریقہ کار تھا، اسرائیل کا جو ریکلیس ملٹری ایکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، سٹیٹمنٹ نے کہا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے کنڈولنسز بھیجے ہیں گورنمنٹ آف ایران اور پیپل آف ایران کو کہ جو لاسز ان کے ہوئے ہیں، اور یہ سارے مسئلے صرف ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو ہٹس کیے گئے ہیں، جو کہ ان کے سائٹس ہیں فورڈو، نیٹانز اور اصفہان، وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اینڈ اٹ از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اینڈ آئی اے ای اے ریزولوشنز اینڈ یونائیٹڈ نیشنز چارٹر۔ کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اگر ہٹ ہو جائے کوئی بھی نیوکلیئر سائٹ اور ریڈیئیشن پھیل جائے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا جو ہے یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کال کیا تھا ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں پزشکیاں کو، ان سے بات کی تھی اور بہت کنڈیم کیا تھا یو ایس اٹیک آن ایران۔ پاکستان، چائنا، رشیا جو ہے انہوں نے بھی جوائنٹلی اپیل کیا تھا ٹو ہالٹ ہوسٹلٹیز ان مڈل ایسٹ، کیونکہ یہ جو ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یہ تینوں جو ہے مل کے ایک ریزولوشن لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا انکنڈیشنل سیز فائر بٹوین ایران اینڈ اسرائیل۔ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انتونیو گترس جو تھے ایٹ یو این ایس سی میٹنگ میں، انہوں نے بھی یہ جو ایران کو بام کیا گیا تھا یو ایس کی طرف سے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا جو ہے کنسرن شو کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یو ایس اسٹرائکس جو ہیں، اس کے بعد یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے اس میں انہوں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بہت ہی خراب کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو امیڈیٹلی اسٹاپ کرنا چاہیے۔ چائنا جو اور رشیا جو ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا یو ایس اسٹرائکس آن ایران پہ، اور پاکستان نے اس کو بیک کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ بالکل ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے۔ اور گترس جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ امیڈیٹلی یہاں پہ سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ سیریس نیگوسیشنز جو ہیں آگے چل سکے۔ ایران کے یونائیٹڈ نیشنز میں جو امبیسڈر تھے عامر سعید ایراوانی، انہوں نے آج ایکیوز کیا اسرائیل اور یو ایس کو فار ڈسٹروئنگ ڈپلومیسی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے بات کر رہے تھے، نہ صرف اس سے پہلے امریکہ سے بلکہ جنیوا کے اندر بھی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں خراب ہوئیں۔ یو ایس ایلیگیشنز جو ہیں وہ بالکل انفاؤنڈیڈ ہیں کہ ہم نان پرولیفریشن ٹریٹی این پی ٹی جو ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا اس کو پولیٹیکل ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، ہم جو ہے ایک پیسفل نیوکلیئر انرجی جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ان لافل ایکشن ہے کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ جو یو ایس ہے وہ بھی ہمارے اوپر جو ہے اٹیک کر رہا ہے۔ اسرائیل کے جو یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر ہیں ڈینی ڈینون، انہوں نے البتہ یو ایس کے جو اٹیک ہے اس کی بڑی تعریف کی۔ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیو ٹو یونائٹڈ نیشنز آصم افتخار جو ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کو بتایا کہ یہ سچویشن بہت زیادہ ریجن میں والٹائل ہوتی جا رہی ہے۔ چائنا کے یو این میں جو امبیسڈر ہیں فو کانگ، اور رشیا کے یونائٹڈ نیشنز کے جو امبیسڈر ہیں ویسی نیبینزیا، انہوں نے بھی جو ہے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نیبینزیا جو ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی فارمر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول نے بھی 2003 میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اسی طرح کا آگے ایک جھوٹا کیس بنایا تھا کہ عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور کیمیکل ویپنز بنا رہا ہے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے عراق کو برباد کر دیا۔ تو اب ہم یو ایس کی یہ جو فیری ٹیلز ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ملینز آف لوگ جو مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں وہ سفر کریں گے، اور ہسٹری جو ہے اس سے ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یو ایس نے کچھ سیکھا ہے، تو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یو ایس کے جو اسٹرائکس ہوئے ہیں جی ایران کی فیسلٹیز کے اوپر ویکینڈ پہ، اس پہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی بہت زیادہ اعتراض کیا. انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ امیڈیٹلی آپ کو ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریجنل سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اس ساری چیز کی جو بات ہے وہ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری وقاص اکرم نے کہا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے خطرے میں چلا گیا ہے، اور امیڈیٹلی عمران خان صاحب کو ریلیز کریں اور ایک انکلوسو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر بنائیں. یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے اٹ از ایٹ دا ورج آف ڈیوسٹیٹنگ وار اور سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو ہم آسٹرچ کی طرح سر کو مٹی میں دے کے جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وار کی جو فلیمز ہے وہ پاکستان کے فٹ سٹیپس تک آگے ہے، اور ان کو جو ہے وہ پاکستان تو اپنے آپ کو بچا لے گا جیسے اس نے طاقت کا مظاہرہ کیا انڈیا کے خلاف، لیکن پھر بھی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے پاکستان کو سیو کریں، اور کیونکہ پاکستان بہت ہارڈ سچویشن کے اندر، انہوں نے کہا جی پاکستان از کاٹ بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس، تو بہت ہی مشکل سچویشن میں آ گیا ہے. اور انہوں نے کہا بہت زیادہ تعریف کی عمران خان صاحب کی وقاص اکرم صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ دیکھ لیں اپنی بہنوں کے تھرو انہوں نے میسج بھیجا کہ 2 weeks کے لیے یہ جو اپنا پروٹیسٹ ہے اس کو پوسٹ پون کریں، کیونکہ ایران اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب جو ہے بہت ہی ڈسپٹیو سگنلز دے رہے تھے، پہلے تو کہہ رہے تھے میں 2 weeks کے بعد ایکشن لوں گا، اس کے بعد اچانک سے ایران پہ انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کی آپ کو بات یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا میں ویسٹ کو میرے سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے، تو اب وہ ساری باتیں صحیح ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہے جو انہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا ہاؤس پہ میں، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں ہمیشہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یو ایس کے ساتھ پیس چاہتے ہیں اور وار کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے وار کی بہت بڑی قیمت اس سے پہلے بھی افغان وار کے بیچ میں جو ہے وہ چکائی ہے، اور یہ یو ایس کی وار تھی جو میننگ لیس اور ان نیسیسری تھی جس میں پاکستان کو ڈریگ کیا تھا. اسرائیل جو ہے انہوں نے اب ایران کو وداؤٹ یو ایس کی بیکنگ اور سپورٹ کے بغیر وہ انویڈ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ یو ایس جو ہے اس نے بھی وائلیٹ کیا ہے ایران کا سوورینٹی اور بریچ کیا یونائیٹڈ نیشنز کا چارٹر، تو اس کے بہت ہی کیٹاسٹرافک جو ہیں وہ کانسیکوینسز آئیں گے. یہ ساری بات آج پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری وقاص اکرم صاحب نے کی ہے. بی بی زرداری جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ وارن کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کا یہ جو ایکسپینشنسٹ ریجیم ہے یہ بہت زیادہ ساری دنیا کو ڈریگ کر رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف، اور جو ہے آج پارلیمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ پیلسٹینینز کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا ہے. اگر یہ پیلسٹائن تک پہنچ گیا ہے اس کے بعد یہ لیبنان تک پہنچ گئے ہیں، پہلے پیلسٹائن تک پہنچے تو بھی نہیں ہم بولے، لیبنان تک پہنچے تو بھی نہیں ہم بولے، سیریا تک پہنچے تو بھی نہیں ہم بولے، یمن تک پہنچے تو بھی نہیں ہم بولے، تو اب یہ ایران تک پہنچ گئے، اور اب بھی اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر کچھ بھی بچا نہیں رہ جائے گا. اسرائیلی رجیم کا جو ایگریشن ہے اس کو ایک دم اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کوٹ کیا پاسٹر مارٹن نیمولوک کی جو پوئم ہے فرسٹ دے کیم کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ دے کیم اینڈ دے یو نو سیٹ کے دے جیسے وہ ٹریڈ کے لیے آئے تھے، جس طرح بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو اسی میں اس نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ وہ آتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد ہولے ہولے سب چیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ساتھ کہ انڈیا جو ہے اب تھریٹن پاکستان کو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان اس کو پوری فورس سے جو ہے جواب دے گا. پاکستان ایئر فورس نے آلریڈی ڈیفیٹ کیا ہے انڈیا کو، تو اب وہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گے. اس کے علاوہ جب وہ بات کر رہے تھے تو اپوزیشن نے کافی شور ہنگامہ مچایا نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کہا جی ان کو بہت ٹائم دیا جاتا ہے ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا، تو بی بی زرداری نے کہا مسٹر سپیکر ان سب کو اگنور کریں کیونکہ پبلک ان کو اگنور کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ میری پارٹی جو ہے اس نے جو بھی گورنمنٹ کا بجٹ آیا اس کو سپورٹ کیا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے جی پاکستان کا 2025-26 کا، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب نے کہا جی کہ ہم اس کے اندر ریلیف ریفارم اور فائنانس ریفارم لے کر آئے ہیں، اور ہم پبلک کا برڈن ختم کر رہے ہیں، انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں، ریونیو کو بوسٹ کر رہے ہیں، اور فیئر ٹیکسیشن جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بہت سارے جو ٹیکس ریلیف انہوں نے دیا اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، انسرٹینٹی ختم ہوئی ہے، اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو بہت ریلیف ملا ہے، کوئی بھی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے ہیں، اور جو ہے وہ گریچوٹی اور جو پینشن تھے ان کے لیے تو بالکل کوئی ٹیکسز نہیں ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اوور 75 ہے وہ تو بالکل ہی ایگزمپٹ ہیں ان ٹیکسز سے. اس کے علاوہ ہم نے سیلز ٹیکس ریڈیوس کیا ہے آن سولر انرجی فرنٹ، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنڈیم کیا جو ہولڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو اور آرٹیفیشل پرائز ہائک کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف سخت ایکشن اب لیا جائے گا. گورنمنٹ نے آج پروپوز کیے ہیں 3 ایڈیشنل ٹیکسیشن میجرز
to raise 36 billion rupees to bridge the gap created by 10% salary hike and reduction in GST on solar panels. ये जो डिमांड थी आईएमएफ की थी, आईएमएफ ने कहा था कि ये जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो इससे आपको कॉस्ट करेगा 29 से 30 बिलियन मोर, और आपका जो सोलर पैनल का जो था जो रेट्स थे जीएसटी था वो 20 बिलियन उसने लेकर आ रहा था. अब जबकि ये दोनों काम आप नहीं कर रहे हैं तो 6 to 8 बिलियन का शॉर्टफॉल रहेगा, तो ये आपको गैप पूरा करना पड़ेगा. तो उसके ऊपर इन्होंने अब तीन जो बिल्स है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% ऑन डे ओल्ड चिक्स जो है ऑफ पोल्ट्री सेक्टर पे लगाई जाएगी. रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 25% टू 29% ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय कंपनीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट. इसके अलावा जो है उन्होंने कहा जी के जो पब्लिक सेक्टर के सैलरीज है, नहीं सॉरी, जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा 15% से 20% तक ऑन प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि किसी भी बंदे को दी जाए. तो इस तरह से ये गैप जो है फेडरल गवर्नमेंट पूरा करेगी. इसहाक डार साहब जो है जी आज पहुंचे हुए हैं यूएई में फॉर द 12th सेशन ऑफ पाकिस्तान यूएई ज्वाइंट मिनिस्टीरियल कमीशन इन अबू धाबी, और ये जो है वो कहते हैं जी कि ये 13 साल से बिल्कुल खामोशी में चला गया था, ये जो थी इनिशिएटिव थी, और फिर उसके बाद अक्टूबर 2024 में इसको फिर से रिवाइव किया गया था. लास्ट सेशन जो था पाकिस्तान और यूएई के बीच में होया था नवम्बर 6 से 7 के बीच में 2013 में, और फिर अब इसको शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने फिर से रिवाइव किया. अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑफिस डार ने अपने डेलीगेशन को लीड किया, और वो कहते हैं जी कि ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन की बात की जाती है, और आने वाले दिनों में जो ये जो नया सेशन है इसमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात की जाएगी. इनके डेलीगेशन के अंदर बहुत सारे फेडरल सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स थे. यूएई की साइड वॉज लेड बाय शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स, और दूसरे बहुत सारे जो हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहां पर थे. हिंदुस्तान जो है जी उसके अंदर ऑपोजिशन ने अब क्वेश्चन कर लिया है फिर से बीजेपी को कि आपने क्यों कंडेम नहीं किया है यूएस के एयर स्ट्राइक्स ऑन 3 इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज. हालांकि मोदी जी जो है उनकी बात हुई थी इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजिशिया के साथ, लेकिन वो कहते हैं जी आपने सिर्फ इतना ही बोला कि सिचुएशन इज वेरी कंसर्निंग, और आपने बोला कि डी एस्केलेशन का जरूरत है डायलॉग और डिप्लोमेसी से, लेकिन आपने उसको कंडेम नहीं किया. कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप का ये जो डिसीजन था आज कि यूएस एयर स्ट्राइक्स करेगा ईरान के ऊपर, उसने मौकरी बनाई है अपने खुद के कॉल के ऊपर जिसमें कि वो कह रहा था कि नहीं ईरान के साथ हमको बात करना चाहिए. कांग्रेस जो है वो बिल्कुल आपकी जो बात है मोदी जी के डिप्लोमेसी और डायलॉग पे बिलीव करती है, लेकिन इंडिया के अंदर इतना दम होना चाहिए, इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि वो जो यूएस का ये अटैक था उसको कंडेम कर सकती. जयराम रमेश ने कहा मोदी जी आप जो हैं आपने इसको अनइक्विवोकली क्रिटिसाइज नहीं किया और कंडेम नहीं किया, तो और इसराइल का जो एग्रेशन है ईरान के खिलाफ उसके ऊपर भी आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं और बॉम्बिंग्स कर